नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे ओलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जाय बन गई है।
देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण।
गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय, मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन स्थल पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा कर रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी, हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। यह चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में पांचवीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को एसओपी बनाए आरबीआई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल न बने।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।